पृष्ठ संख्या 563, अलंकृति तुलनात्मक अध्ययन। अधिकतर अलंकारों का विधान सादृश्य के आधार पर होता है। फारसी और हिंदी सूफी कवियों ने भी प्रायः सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग किया है। उन्होंने सादृश्य मूलक अलंकारों से स्वरूप का बोध कराने, पृष्ठ संख्या 564, तथा भावों का उत्कर्ष प्रकट करने में पर्याप्त सहायता ली है। हिंदी और फारसी सूफी काव्यों में सादृश्य मूलक अलंकारों के अंतर्गत तशबीह, उपमा और इस्तियारा, रूपक का बाहुल्य है। एक, तशबीह, उपमा और इस्तियारा, रूपक में भेद इतना है कि तशबीह में साम्य की प्रतीति अभिधा से होती है और इस्तियारा में साम्य की प्रतीति व्यंजना से होती है। फारसी और हिंदी सूफी कवियों की रचनाओं में अलंकारों के प्रयोग में नितांत स्वाभाविकता है। कहीं भी अलंकारों की अनावश्यक ठूंस ठास नहीं की गई है। काव्य रस के स्वाभाविक प्रवाह में जो अलंकार आ गए हैं सो आ गए हैं। उनकी योजना के लिए कवियों की ओर से कोई आग्रह नहीं है। इस प्रकार फारसी और हिंदी सूफी कवियों के लिए अलंकार साध्य नहीं, स्वाभाविक साधन मात्र हैं। फारसी और हिंदी के सूफी कवियों के देशों की प्राकृतिक सुषमा वर्णनातीत है, इसलिए दोनों देशों के सूफी कवियों ने प्रायः प्रकृति से उपमानों का चयन किया है। वस्तुतः उपमानों के चयन में प्रकृति ने सदैव कवियों का साथ दिया है। एक, हिंदी के सूफी कवियों के शिरोमणि मलिक मोहम्मद जायसी को सादृश्य मूलक अलंकारों के मूल उपमा से उतना प्रेम नहीं है जितना उत्प्रेक्षा से, और उत्प्रेक्षा का भी वह प्रकार जहाँ किसी हेतु की कल्पना की जाती है, अर्थात हेतुत्प्रेक्षा। हेतुत्प्रेक्षा कैसे अलंकारों को फारसी साहित्य में सनते हुस्नोत्तलील कहते हैं। खाजू किरमानी का निम्नलिखित शेर देखिए, जिसमें इस अलंकार का प्रयोग स्वाभाविक एवं सुंदर रूप से हुआ है। बेचारा लाला हस्त दिलश दरमियाने खूं, गोई जे दस्ते बादे सबामी बुरद सितम, अर्थात बेचारे लाले, पोस्त के फूल का दिल रक्त में आलिप्त है, मानो यह प्रभात समीर द्वारा दिए गए कष्टों को सहन कर रहा है। हम देखते हैं कि प्रकृति के क्रीड़ा स्थल ईरान, पृष्ठ संख्या 565, देश के कवियों के उपमान सहराओं वाले अरब के कवियों के उपमानों की अपेक्षा कितने मनोहर रहे। इस संबंध में मौलाना शिबली का कथन उल्लेख्य है। यह जाहिर है कि ईरान का शोख और रंगीन शायर, जो ऐश व नेमत के दामन में पला है, माशूक की जुल्फ को रस्सी से, कमर को जंबूर की कमर से, माशूक की उंगली को मिसबाक से तशबीह नहीं दे सकता। यह चीजें अरब ही के लिए मौजूद थीं, जो जंगल के सहराई और पहाड़ों के शिकारी थे। बनफशा, सुम्बुल, यास्मन, नरगिस, यह चीजें अरब ने ख्वाब में भी नहीं देखी, तशबीह कहाँ से आती। अलबत्ता जब सल्तनत बगदाद में आई और दुनिया का चमनजार नजरों में रहने लगा, तो अरबी शायरी में भी यह सब बातें आ गईं। मौलाना शिबली, शेरुल अजम, भाग 4, लखनऊ, सन 1912, पृष्ठ 135-36। फारसी और हिंदी के सूफी कवियों ने प्रकृति के अतिरिक्त सांसारिक वस्तुओं से भी उपमानों को चुना है, परंतु ऐसे उपमानों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। उपमानों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए अब पहले हम फारसी एवं हिंदी सूफी काव्यों के नक्षिक वर्णनों से उद्धरण प्रस्तुत करेंगे, तदनंतर शरीर के विभिन्न अंगों उपांगों के प्रमुख उपमानों की सूची देंगे। नक्षिक वर्णन से संबंधित उपमान। फारसी सूफी काव्य, मौलाना जामे कृत यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा, नवल किशोर प्रेस, कानपुर, 47-53 से नक्षिक विषय कुछ शेर देखिए। बफरकश मुए दामे होश मंदा, अजूता मुश्क फर्क अम्मा न चंदा, अर्थात उस जुलेखा के शेर पर बाल बुद्धिमानों के लिए जाल थे, वे प्रायः मुश्क कस्तूरी के समान थे। फिरोध आवेस्ता जुल्फे समन साय, फिगंदा शाखे गुलरा साया दर पाए, पृष्ठ संख्या 566। अर्थात उसने चमेली सी सुगंध वाली लंबी जुल्फे नीचे लटकाई हुई थी और इस प्रकार शाखे गुल एक कद दो के पांव पर साया डाला हुआ था। फलक दर से जमालश कर्द तलखी निहादा अज जबीनश लोहे सीमी, अर्थात आकाश ने उसे सौंदर्य का पाठ पढ़ाया। उसके ललाट पर चांदी की तख्ती रखी, अर्थात उसका माथा चांदी की तख्ती के समान था। मिकहल नरगिसश अज सुरमा ए नाज जे मिजगा बर जिगरहा नावक अंदाज, अर्थात उसके नरगिस के समान कजरारे नैनों से पलकों के तीर जिगर पर चलते थे। शुदा सीनश आया अजलले खंदा कुशादा मीमरा उकदा बदंदा, अर्थात उसके मुस्कुराते हुए लल तीन से होठों से सीन चार अक्षर दांत प्रकट हुए। मीम पांच अक्षर मुंह से दांतों की गुत्थी सुलझ गई, यानी यह पता चल गया कि उसके छोटे से मुंह में दांत भी थे। जे बुस्ताने इरम रुएश नमूना दरु गुल्हा शिगुफ्ता गुना गुना, अर्थात उसका मुखमंडल बागे बिहिश्त का नमूना था जिसमें प्रत्येक प्रकार के पुष्प खिले हुए थे। बरु हर जानिब अज खाले निशान चू जंगी बच्चगा दर गुलिस्ताने, अर्थात मुखड़े पर हर तरफ तिल के निशान ऐसे थे जैसे हबशियों के छोटे छोटे बच्चे बाग में हों। एक पुष्प की शाखा गुलाब के फूल की शाख, दो देह, तीन पद्मराग एक बहुत ही कीमती रत्न, चार सीन अक्षर के दांतों से दंदाने होते हैं, पांच मीम का आकार मुंह जैसा होता है, छः नंदन वन। पृष्ठ संख्या 567। जन खदानश की सीमे बे जकाशत दरु चाहे पुर अज आबे हयातस्त, अर्थात उसका चिबुक ऐसी चांदी के समान था जो धार्मिक कर से मुक्त था, उसमें कूप आवे हयात से भरा हुआ था। बयाजे गर्दनश साफी तर अज आज बगर्दन आवरंदश आहुआ बाज, अर्थात उसकी ग्रीवा की धवलता हाथी दांत से भी अधिक उज्ज्वल एवं स्वच्छ थी। हिरणों ने उसका कर अपनी गर्दन पर ले लिया था। बरु दोषस जदा ताना समनरा गुल अंदर जैब करदा पैराहन रा, अर्थात वर्ण की दृष्टि से उसके कंधे ने चमेली पर ताना मारा, पुष्प ने उसका परिधान अपने जेब में रख लिया। दो पिस्ता हर यके चू कुब्बा ए नूर हबावे खास्ता अज एने काफूर, अर्थात दोनों स्तन प्रकाश के कलश थे, लगता था मानो काफूर के चश्मे में दो बुदबुद उठे हों। दो नारे ताज़ा बरुस्ता जे यक शाख कफे उम्मीद शाह नासूदा गुस्ताख, अर्थात लगता था मानो दो अनार एक शाखा से उगे हों, अभी आशा की हथेली ने उनका स्पर्श नहीं किया था। जे बाजू गंगे सीमी दर बगल बूद यारे सीम पेशे उ दगल बूद, अर्थात बाजू से चांदी का कोश बगल में था, यानी वर्ण की दृष्टि से उसकी बगल चांदी जैसी थी, चांदी की परखने वाली कसौटी उसकी चांदी जैसी बगल के सामने खोटी थी। मियानश मुए बलकज मुए नीमे जे बारीकी बरु अज मुए बीम। पृष्ठ संख्या 568। अर्थात कमर उसकी बाल थी बल्कि आधा बाल, बारीकी के कारण उसे बाल से भी टूट जाने का डर था। नया रस्ती कमर अज मुए बास्तन कजा मुबूद यश बीमे गुसिस्तन, अर्थात कमर बाल से भी नहीं बांधी जा सकती थी क्योंकि बाल से उसे टूटने का डर था। सुरीनश कोह अम्मा सीमे सादा चू कोहे कस कमर जेर उफ्तादा, अर्थात उसके नितंब शुद्ध चांदी के पर्वत की भांति थे, निस्संदेह वे पर्वत जैसे थे जो कमर से नीचे पड़े हों। सखुन रानम जे साके ऊंकी चूनस्त बिनाए हुस्न रा सीमी सुतूनस्त इत्यादि, अर्थात अब मैं उसकी पिंडलियों के संबंध में बताता हूँ, वे ऐसी थी जैसे कि चांदी के स्तंभ होते हैं। उक्त शेरों में मौलाना जामी ने निम्नलिखित उपमानों की योजना की है। उपमेय बाल उपमान, दाम जाल रूप साम्य के आधार पर, मुश्क कस्तूरी वर्ण तथा गुण साम्य की दृष्टि से। उपमेय अलकें, उपमान, समन चमेली गुण साम्य के आधार पर, रसन रसी रूप साम्य की दृष्टि से। उपमेय कद शरीर, उपमान शाख गुल पुष्प की शाखा गुण साम्य के आधार पर। उपमेय ललाट लोहे सीमी चांदी की तख्ती वर्ण साम्य के आधार पर। उपमेय दंत उपमान सीन अक्षर रूप साम्य के आधार पर। उपमेय मुह उपमान मीम अक्षर रूप साम्य के आधार पर। उपमेय मुख उपमान बागे इरम विहिष्ट का बाग गुण साम्य के आधार पर। उपमेय तिल उपमान जंगी बच्चा हफ्षी का बच्चा वर्ण साम्य की दृष्टि से। उपमेय चिबुक उपमान सीम चांदी वर्ण की दृष्टि से। उपमेय चिबुक कूप उपमान चाहे आबे हयात का कुआं रूप साम्य के आधार पर। उपमेय नयन उपमान नरगिस रूप तथा गुण साम्य की दृष्टि से। उपमेय पलक उपमान नावक तीर रूप साम्य के आधार पर। उपमेय ग्रीवा उपमान हरण रूप साम्य के आधार पर, आज हाथी दांत वर्ण साम्य की दृष्टि से। उपमेय कंधा उपमान समन चमेली वर्ण साम्य के आधार पर। उपमेय स्तन उपमान कुब्बाए नूर प्रकाश के कलश रूप साम्य की दृष्टि से। हबाबे काफूर काफूर के बुदबुद रूप एवं वर्ण साम्य के आधार पर। अनार रूप साम्य की दृष्टि से। उपमेय बगल उपमान सीम चांदी वर्ण की दृष्टि से। उपमेय कमर उपमान मुंह बाल रूप साम्य के आधार पर। उपमेय नितंब उपमान कोह रूप साम्य के आधार पर। उपमेय उरु उपमान सीमित सूतून चांदी का स्तंभ रूप साम्य की दृष्टि से इत्यादि। ये उपमान एक रूप साम्य वर्ण साम्य और गुण साम्य पर आधारित हैं। दो अधिकांश प्रकृति के हैं। तीन परंपरागत और रूढ़ हैं। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार मौलाना जामी से प्रायः 3 शताब्दी पूर्व हुए, परंतु उन्होंने रूम की एक ईसाई युवती का ऐसा ही नक्षिक वर्णन किया है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार मंती कुत्तैर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 76 पृष्ठ संख्या 570। लल सिराबश जहाने तिश्ना दाश्त नरगिसे मस्तश हजारा दशना दाश्त, अर्थात उसके लल जैसे अधर समस्त संसार को व्याकुल कर रहे थे और उसकी नरगिस जैसी मस्त आँखें सैकड़ों कटारों का काम कर रही थीं। हर की सुए चश्मा एव तिश्ना शुद्ध दर दिलश हर यक मिजा दशना शुद्ध, अर्थात जो व्यक्ति भी उसके चश्म नयन पर विमुग्ध हो जाता था उसके दिल पर पलके कटारों का काम करती थी। गुफत रा चू दर दहानश रह नबूद अज दहानश हर के गुफत आगह नबूद, अर्थात उसका मुंह इतना तंग था कि वह बात ही नहीं कर सकती थी, इसलिए वह जो कुछ कहती थी कोई समझ नहीं सकता था। हमचू चश्मे सोजने शक्ले दहानश बस्ता जुन्नारे चू जुल्फश बर मियानश, अर्थात उसके मुंह का आकार सुई के नकवे जैसा था और कमल पर जुल्फ का जुन्नार बांधे धार्मिक दागा हुए थी। चाहे सीमी दर जन खदा दाश्त उ हमचू ईसा दर सखुन जा दाश्त उ, अर्थात उसके चिबुक के नीचे एक चांदी का कूप था और हजरत ईसा एक की भांति उसकी हर बात में चमत्कार था। बातों को सुनकर उसके मृत प्रेमी जीवित हो जाते थे। एक दमे ईसा हजरत ईसा का श्वास प्रसिद्ध है। आप बीमारों पर फूंक मारकर उनको अच्छा कर दिया करते थे, बल्कि एक बार तो आपने एक मृत व्यक्ति को फूंक मारकर जिला दिया था। हिंदी सूफी काव्य हिंदी सूफी कवियों के उपमान फारसी साहित्य के प्रभाव से प्रायः पृष्ठ संख्या 571 अछूते हैं। कवि शेख निसार कृत यूसुफ जुलेखा एवं कवि नसीर विरचित प्रेम दर्पण नामक ग्रंथ मौलाना जामी कृत यूसुफ जुलेखा की कथा के आधार पर रचे गए हैं, परंतु उनमें भी ऐसे ही उपमान लिए गए हैं जैसे जायसी मंझन आदि सूफी कवियों ने लिए हैं। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए हम सर्वप्रथम शेख निसार और कवि नसीर के कुछ पूर्ववर्ती कवियों के नक्षिक वर्णनों से कुछ पंक्तियां उद्धृत करते हैं। जायसी कृत पद्मावत के जन्म खंड से कुछ अर्धालियां देखिए। इनमें भारतीय जीवन और साहित्य से परिचित उपमानों की योजना की गई है। उपमान का रूप साम्य, वर्ण साम्य और गुण साम्य पर आधारित है और इनका चयन प्रायः प्रकृति से किया गया है। मैं उनंत पद्मावती बारी, रचि रचि विधि सब कला संवारी, जग बेधा तेहि अंग सुवासा, भंवर आए लुबुधे चहु पासा, बेनी नाग मलय गिरी बैठी, ससी माथे होई दूरज बैठी, भौह धनुक साधे सरफेरे, नयन कुरंग भूल जनु हेरे, नासिक कीर कमल मुख सोहा, पद्मिनी रूप देख जग मोहा, मानिक अधर जसन दसन जनु हीरा, हिय होल से कुछ कनक गंभीरा, केहरी लंक गवन गज हारे, सुरनर देखि माथ भुई धारे। एक प्रस्तुत संदर्भ में जायसी ने अधोलिखित उपमानों की योजना की है। उपमेय वेणी उपमान नाग रूप साम्य की दृष्टि से, उपमेय पीठ मलयगिरी उपमान मलयगिरी रूप साम्य के आधार पर, उपमेय ललाट उपमान द्वितीय का शशि रूप साम्य की दृष्टि से, उपमेय भौह उपमान धनुष रूप साम्य के आधार पर, उपमेय कटाक्ष उपमान वाण रूप तथा गुण साम्य की दृष्टि से, उपमेय नयन उपमान मृग रूप साम्य के आधार पर, उपमेय नासिका उपमान शुक रूप साम्य की दृष्टि से, उपमेय मुख उपमान कमल वर्ण एवं गुण साम्य के आधार पर। एक जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 20 पृष्ठ संख्या 572। उपमेय अधर उपमान माणिक्य रूप साम्य की दृष्टि से, उपमेय दंत उपमान हीरा वर्ण साम्य के आधार पर, उपमेय कुछ उपमान स्वर्ण गंभीर एक गुण साम्य के आधार पर, उपमेय कटी उपमान केहरी लंक केसरी की कटी रूप साम्य के दृष्टि से, उपमेय चाल उपमान गज गति गुण साम्य के आधार पर। जायसी ने केशों का वर्णन करते हुए लिखा है, का सिंगार ओहि बरनौ राजा, ओहिक सिंगार ओहि पैछाजा, प्रथम शीस कस्तूरी केशा, बलि बासुकी का और नरेसा, भौर केश वह मालती रानी, बिसहर लूरे लेहि अरधानी, बेनी छोरि छार जौ बारा, सरग पतार होई अंधियारा, कोंवर कुटिल केस नग कारे, लहरनि भरे भुवंग बैसारे, बेधे जनो मलय गिरी बासा, शीस चढ़े लोटहि चौपासा, घुंघर वार अलकें विष भरी, सकरें पेम चहें गियु परी, अस फंदवार केस वै पराशीस गियु फांद, अष्टौकुरी नाग सब अरुज केस के बांध। दो मंजन कृत मधुमालती में केशों का वर्णन देखिए। तेहि पर कच विखधर भिख सारे, लोटहि सेज सहज लुहकारे, सग बगाहि परतिख मनियारे, गरल भरे बिखधर हतियारे, निसि अंजोर जैस बदन दिखाएं, तस अंध्यार दिन कच भोकराएं, कच न हो ही बिरही दुख सारा, पयो जाई मधुशीस सिंगारा। एक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित पद्मावत में कनक गंभीरा के स्थान पर कनक जंभीरा पाठ मिलता है। पृष्ठ 48। कनक जंभीरा का अर्थ है सोने का बड़ा नींबू। यह उपमान रूप साम्य के आधार पर है। दो जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 41 पृष्ठ संख्या 573। भूलि दसौ दशा निजुताही, चिहुर चिन्हाई भई जग जाही, छिटके चिहुर सुहागिनी जगत भयउ अंधकाल, जनु बिरही जन जिय बध कारण मनमथ रोपा जाल। एक यूसुफ जुलेखा में कवि नसीर ने इसी प्रकार के उपमानों का प्रयोग किया है, यथा केस शीस का करो बखाना, तक्षक देखी सोताही लजाना, मुख पर लरही जो होई बेकरारा, तब संदेह करे संसारा, कौ कहे अहै तम राजा, सोहै तहवा ज्योत बिराजा। कौ कह अहै दिनेश सुहावा, बरत हेत कालिंदी आवा। कौ कहे कि नागिन कारी, दीन छाड़ी मनसो उजियारी। कौ कहे श्याम अली मोहा, पुहुप पराग आये तेहि सोहा। पुहुप चित्र मह मृग मद बारा, खींच चित्र चितरे चितेरन मारा। केस शीस मानो निसिकारी, प्रात काल मुख कै उजियारी। केस रचत तज आस न पासा, को तेहि जाय सो पावे बासा। सिरिस फूल तह शोभा देई, ओ चोटी लखि मन हरि लेई। बेनि गूँथि लरी से, जग नागिन बन लीन। मूंगा चौकी पीठ पर, भान छाणि देहि तेहि दीन। दो प्रमुख उपमानों की सूची। फारसी एवं हिंदी सूफी कवियों ने शरीर के अंगों उपांगों के लिए जिन मुख्य मुख्य उपमानों के प्रयोग किए हैं, उनकी सूची नीचे प्रस्तुत करते हैं। उपमेय, केश राशि अथवा अलकें। उपमान फारसी, दाम जाल, रसन रस्सी, जंजीर श्रृंखला, अफई नाग, अजदर अजगर, सुम्बुल बालछड़, बनफशा शबे तार। एक मंजनकृत मधुमालती, संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, इलाहाबाद, सन 1961 ईस्वी, पृष्ठ 65-66। दो यूसुफ जुलेखा, जुलेखा वर्णन खंड छंद दो, पृष्ठ संख्या 574। अंधेरी रात, शाम, मुश्क कस्तूरी, अब्र मेघ, अब्रे सियाह काला बादल, दूधे शम मोमबत्ती अथवा दीपक का धुआं। हिंदू एक, तातार लाम, अक्षर कमंद पाश इत्यादि। हिंदी नाग नागिन, भ्रमरावली, कस्तूरी, प्रेम जंजीर, राहु, अमावस्या की घटा, यमुना तरंग आदि। उपमेय मांग, उपमान फारसी, कहकशां आकाशगंगा, नहर, राहे जलमात अंधकार का मार्ग, बर्क दर अब्रे सियाह, काले घन में विद्युत, खते जर स्वर्ण रेखा, शोला ए तूर दो, तूर पर्वत की अग्नि ज्वाला, मारे सफेद श्वेत सर्प इत्यादि। हिंदी सरस्वती की धार, वीर बधूटियों की पंक्ति, घन में विद्युत, आरक्त असि, कंचन रेखा, सूर्य किरण, बग पंक्ति आदि। उपमेय ललाट, उपमान फारसी, सुबह सादिक नूर का तड़का, आफ्ताब सूर्य, आईना दर्पण, माह शशि, लोहे सीमी चांदी की तख्ती, मेहराबे काबा काबा की चाप इत्यादि। हिंदी द्वितीया का चंद्र, सूर्य किरण, पारस, ज्योति। एक काले रंग के हिंदुस्तानी जो मशहूर लुटेरे रहे हैं। दो हजरत मूसा ने तूर पर्वत पर प्रभु के प्रकाश के दर्शन किए थे। पृष्ठ संख्या 575। उपमेय भौह, उपमान फारसी, ताक ताखा, मेहराबे काबा काबा की चाप, तलवार कमान, ईद, हिकाल, नवचंद्र, कौसे कुजह इंद्रधनुष, शाखे आहू हिरण के सींग, अकरब बिच्छू इत्यादि। हिंदी धनुष। उपमेय नयन, उपमान फारसी, आहू हिरण, नरगिस, आईना दर्पण, सयाद व्याध, सदफ सीप, प्याला बादाम, कश्ती तरणी इत्यादि। हिंदी खंजन, मृग, तुरंग, कमल, भ्रमर, मीन, दर्पण, नरगिस एक, बादाम तारा। उपमेय पलक, बरुनी, उपमान हिंद फारसी, तीर, खार, कंटक, निस्तर, शल्य, महमेज, घोड़े को एड़ देने का कांटा जो सवारों की एड़ी में लगा होता है, तरकश, तुणीर, कतारे लश्कर, सेना की पंक्ति इत्यादि। हिंदी बाण, संधान किया गया बाण, राम रावण की सेना। दो उपमेय नासिका, उपमान फारसी, अलिफ अक्षर, गुंचा ए गुल फूल की कली, गुले जंबक एक पुष्प विशेष, तेगे उर्य नंगी तलवार, सुहेल एक तारा आदि। हिंदी शुक तलवार सेतु। एक कवि नूर मोहम्मद एवं कवि नसीर ने आँखों की उपमा नरगिस से दी है। नरगिस नीर गुलाब वही धोई। इंद्रावती भाग एक पृष्ठ 38। दो जुरी राम रावण कैसेना, बीच समुद्र भये दुई नैना। जैसे ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 43। पृष्ठ संख्या 576। उपमेय अधर उपमान फारसी। लाल पद्मराग याकूत पुलक। अकीक एक प्रकार का लाल पत्थर। उनाब एक प्रकार के वृक्ष का फल। पिस्ता बरगे गुल फूल की पंखुड़ी। शहद कंद इत्यादि। हिंदी विद्रुम बिंब माणिक्य दुपहरी का फूल सूर्य रुधिर की तलवार आदि। उपमेय दांत उपमान फारसी। गौहर मौक्तिक अलमास हीरक। कतरा ए शबनम ओस बिंदु नूर प्रकाश। तारा दुर मोती बुर्क विद्युत। दाना ए अनार हीरे की कनी आदि। हिंदी दामिनी हीरा दाड़िम बीज कुंद चमेली आदि। उपमेय कपोल उपमान फारसी। बरगे गुल फूल की पत्ती। गुल पुष्प बर्क बिजली आतिश अग्नि। गुल खुर्शीद सूरजमुखी का फूल। गुलस्ता स्तवक आफ्ताब सूर्य महताब शशि सम आईना दर्पण इत्यादि। हिंदी कमल नारंगी लड्डू गेंद दर्पण आदि। उपमेय तिल उपमान फारसी। हिलाल नवचंद्र दाना जंगी बच्चा हफ्शी का बच्चा। तुख्मे रेहान नाजबू फूल का बीज। फिलफिल मिर्च संगे अस्वद काला पत्थर। मक्का के पवित्र पत्थर को भी संगे अस्वद कहते हैं। पृष्ठ संख्या 577। दाग गोय सादत सौभाग्य की गेंद नमक दान। नुक्ता ए जमाले जीम जमाल के जीम का नुक्ता। हिंदी भ्रमर घुंगुची विरह की चिंगी अग्निबाण ध्रुव। उपमेय कान उपमान फारसी। बरगे गुल फूल की पत्ती सदफ सीपी दहाने मार सांप का मुंह। हिंदी सीपी। उपमेय मुख उपमान फारसी। गुल गुलदस्ता स्तबक गुले निसरीन सेवती का पुष्प गुलशन उपवन। सुबह प्रभात आफताब सूर्य महताब चंद्रमा। रोज दिन शम दीपक अथवा बत्ती चरागे तूर आतिश आग चश्मा कुरान। हिंदी कमल चंद्रमा। उपमेय ग्रीवा उपमान फारसी। सुराही बयाज धवलता शीशा आज हाथी दांत सुबह प्रभात आदि। हिंदी कम्बु सुराही मयूर तमचुर इत्यादि। उपमेय भुजा उपमान फारसी। सीम चांदी शाखे गुल फूल की शाखा शाखे संदल चंदन की डाली। हिंदी कंचन दंड कदली गाभ चंदन खम्ब पारस दंड कमलनाल। उपमेय उरोज उपमान फारसी। कुब्बा ए नूर प्रकाश का कलश अनार हबाबे काफूर काफूर के बुदबुद। हिंदी कंचन बिल्व युग्म श्रीफल कंचन के लड्डू दाड़िम। पृष्ठ संख्या 578। कटी उपमेय कटी उपमान फारसी। मुंह बाल जुन्नार धार्मिक धागा जनेऊ रगे जान रगे गुल पुष्प का रेशा अदम अनस्तित्व तारे सुम्बुल बालछड़ का तार खते इस्तिवा भूमध्य रेखा इत्यादि। हिंदी भृंग कमलनाल के रेशे बरे की कटी केहरी लंक चार का अक्षर इत्यादि। उपमेय पीठ उपमान फारसी। लोहे जमुर्रद पन्ना की तख्ती आईना दर्पण। हिंदी मलयगिरी इंद्रनीलगिरी। उपमेय नितंब उपमान फारसी। कोह पहाड़, हिंदी पर्वत, कामदेव के नगाड़े। उपमेय हथेली, उपमान फारसी। यदे बैजा श्वेत हस्त, यदे बैजा हजरत मूसा का एक चमत्कार था जिसे खुदा ने आपको कोहे तूर पर दिया था। यह चमत्कार इस प्रकार था कि आप अपना दायां हाथ बगल में ले जाकर जब निकालते थे तो वह चमकने लगता और लोग चकित रह जाते थे। गुलदस्ता स्तबक, शाखे गुल पुष्प की शाखा, आईना दर्पण, हिंदी कमल। उपमेय उंगली, उपमान फारसी, शाखे मर्जान प्रवाल की शाखा, शाखे गुल पुष्प की डाली, रगे गुल फूल की रग, अल्प अक्षर इत्यादि। हिंदी मूंगफली, विदम की वेल। उपमेय उरु, उपमान फारसी, सीमी सूतून चांदी का स्तंभ, शमय काफुरी। हिंदी कदली स्तंभ, कनक स्तंभ। पृष्ठ संख्या 579। उपमेय चरण, उपमान फारसी, गुलदस्ता स्तबक, लाला ऐश गुफ्ता प्रफुल्ल पुष्प, हिंदी कमल। नरगिस। कवि नूर मोहम्मद एवं कवि नसीर ने फारसी का अनुसरण करते हुए आँखों की उपमा नरगिस से दी है। डॉक्टर सरला शुक्ल के शब्दों में कवि नूर मोहम्मद ने अपने काव्य में नेत्र के उपमान स्वरूप नरगिस का ही प्रयोग किया है। भारतीय साहित्य परंपरा एवं प्रकृति उपकरणों में ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो नरगिस की अपेक्षा नेत्र के सौंदर्य, आकर्षण एवं दीर्घता को सफलता से पाठक तक प्रेषित करती हैं। नरगिस पुष्प से अधिकांश भारतीय पाठक का परिचय नहीं है। भारत में नरगिस ऐसी गोल आंखें होती भी नहीं हैं। डॉक्टर सरला शुक्ल जायसी के परवर्ती हिंदी सूफी कवि और काव्य, लखनऊ संवत 2013, विक्रम पृष्ठ 254। ईरान में भी इस प्रकार की गोल आंखें नहीं हैं। वस्तुतः तुर्क माशूकों की आंखें छोटी और गोल होती थीं, जो नरगिस से समानता रखती थीं। अतएव प्राचीन फारसी कवि आंखों की उपमा नरगिस से देते थे। धीरे धीरे यह उपमान रूढ़ हो गया। अब भी अर्वाचीन कवि नरगिस का नयन के उपमान स्वरूप प्रयोग करते हैं। इस संबंध में मौलाना शिबली का कथन उल्लेख्य है। आँख की तशबीह उपमा नरगिस से आम है, लेकिन नरगिस को देखा तो उसका फूल एक गोल सी कटोरी होती है जिसको आँख से मुनासबत संबंध समानता नहीं। तफ़ुस अन्वेक्षण से मालूम हुआ कि इब्तिदा ए शायरी काव्य के आरंभ में तुर्क माशूक थे। उनकी आँखें छोटी और गोल होती थीं। इस बिना पर कुदमा प्राचीन कवि आँखों के छोटे होने की तारीफ करते थे। तुर्क बच्चों के बाद जब पृष्ठ संख्या 580 मुख बचे एक ईगन पूजकों अथवा मधुशाला के व्यवस्थापकों व रक्षकों के बेटे ईरानी माशूक बने तो बादाम आहू मृग वगैरह तशबीहें पैदा हुईं, लेकिन नरगिस भी पुरानी यादगार के तौर पर रह गई। 2. फारसी में तरुणों का रूप सौंदर्य। फारसी में तरुणी की अपेक्षा तरुणों के रूप सौंदर्य का वर्णन अधिक उपलब्ध हुआ है। हजरत यूसुफ के अद्वितीय सौंदर्य के लिखने में तो कवियों ने कलम तोड़ दिया है। ऐसे वर्णनों में उपर्युक्त उपमानों ही का प्रयोग किया गया है। ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार ने मंतिकुत्तैर में एक मंत्री के रूपवान बेटे 3 के रूप सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार किया है। चेहरा दाश्त आफ पिस चू आफताब, तुर्रा ए शबरंगे ऊँचू मुश्क नाब। अर्थात उस लड़के का चेहरा सूर्य के समान था और उसकी रात्रि जैसी काली अलकें कस्तूरी की भांति सुगंधित थीं। सायाबान आफ्ताबश मुश्क बूद, आबे हैवा अजलब्ज लबे खुश्क बूद। अर्थात उसके सूर्य जैसे मुखमंडल पर अलकों की छाया पड़ रही थी, उसके अधरों के सामने आबे हयात भी पानी पानी हो गया। दरमियाने आफ्ताबे दिल सतानश, बुद हमचू जर्रा ए शक्ले दहानश। 1. आतश कदा अग्निशाला की सेवा के लिए जो सुंदर तरुण नियुक्त होते थे वे मुग कहलाते थे और उनका अध्यक्ष पीरे मुगा कहलाता था। ये नौजवान सभाओं में साकी का काम भी करते थे। 2. मौलाना शिबली शेरुल अजम भाग 4 लखनऊ सन 1912 ईस्वी पृष्ठ 221। 3 ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार मंत्री कुत्तर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 284-85। मंत्री के इस बेटे पर एक बादशाह आसक्त हो गया था। पृष्ठ संख्या 581 अर्थात उसके सूर्य जैसे मुखमंडल पर मुंह एक जर्रा कण के समान था। जर्रा ए फितमा ए मर्दुम शुदा दर दरुनश सी सितारा गुमशुदा अर्थात वह जुर्रा कण कितना मुंह लोगों को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए काफी था। उस मुंह में 30 तारे दांत छिपे हुए थे। जुल्फे उ बर पुश्ते उ सरफराज दर सर अफराजी ब पुश्त उफ्तादाबाज अर्थात उसकी अलके कंधों पर सवार थीं, उन्हें मान देने के लिए पीठ पर लटका दिया गया था। बूद बर शक्ले कमानश अब्रुए कस कुजा दाश्त आ कमारा बाजुए अर्थात उसके चेहरे पर भ्रिकुटियाँ थीं जो कि कमान जैसे थीं, किसी में भी उन कमानों को खींचने की शक्ति नहीं थी। नरगिसे अफसू गरश दर दिलवरी करदा हर यक मिजा सद साहिरी अर्थात उसकी नरगिसी आंखें दिल को उड़ाने में एक एक पलक से सैकड़ों जादू कर रही थीं। लले उ चरश्मा सर चश्मा ए आबे हयात चूं शक्र शीरी ओ सरसब्ज अजनबात अर्थात उसके लाल पद्मराग जैसे लाल ओंठ आबे हयात का उद्गम स्थल थे और वे खान तथा मिस्त्री के समान मीठे थे। खते सब्जों सुर्खी ए रुए जमाल तूती ए सर चश्मा ए बहरे कमाल युवावस्था में गालों पर उगने वाले नए बालों को खत या खते सब्ज कहते हैं। खत के लिए उपमान तूती सब्जा हरियाली जमुरद पन्ना खते मुश्की कस्तूरी का खत सुम्बुलस्तान बाल छड़ का उत्पत्ति स्थल परवाना लश्करे मोर पिपीलिका की सेना पर पंख इत्यादि। पृष्ठ संख्या 582 अर्थात उसके सुंदर मुखमंडल का मुख लोम और लालिमा कमाल पूर्णता कला के सागर के उद्गम स्थल की तूती थे। मुश्के खालश नुक्ता ए जीमे जमाल माजी ओ मुस्तकबिल अजब करदा हाल अर्थात उसका कस्तूरी सा तिल सौंदर्य के जीम का नुक्ता था। उसमें माजी भूतकाल और मुस्तकबिल भविष्यत काल झलक रहे थे। भाव वर्णन के उपमान फारसी एवं हिंदी के सूफी कवियों ने भावों का उत्कर्ष प्रकट करने में उपमानों से पर्याप्त सहायता ली है। फारसी अब हम फारसी के सूफी कवि मौलाना जामी विरचित यूसुफ जुलेखा से कुछ शेर उद्धृत करते हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने उपमानों के माध्यम से भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। जब जुलेखा ने हजरत यूसुफ को कारागार में भेज दिया तो वह अत्यधिक व्याकुल हुई। कवि लिखता है एक चू खाली दीद जा गुल गुलशने खेश चू गुंचा चाक जद पैराहने खेश अर्थात जब जुलेखा ने उस फूल यूसुफ से अपना उपवन खाली देखा तो गुंचा कली की भांति अपना वस्त्र फाड़ डाला। ब नाखुन हमचो गुल रुखसार मी कंद चू सुम्बुल मुए अंबर बारी कंद अर्थात वह नखों से फूल से कपोलों को छीलती थी वह बाल छड़ से सुगंधित बालों को नोचती थी। एक यूसुफ जुलेखा नवल किशोर प्रेस कानपुर पशेमानी ए जुलेखा अजफिरस्त दाने यूसुफ बजिंदान यूसुफ को कारागार में भेजकर जुलेखा का पश्चाताप पृष्ठ 235-41 पृष्ठ संख्या 583 बदंदा लल चू नाब भी खस्त ब अकदे दुर अकीके नाब भी बस्त अर्थात दांतों से लल से अधरों को नाब के समान चबाती थी और मोतियों की लड़ी से शुद्ध अकीकों को पिरो रही थी अर्थात आंसुओं की झड़ी लगा रखी थी। रूखे गुलगुने खुदमी साख्त नीली चू नीलोफर जे जरबत हाय सेली अर्थात उसने थप्पड़ मार मार कर अपने पुष्प जैसे सुर्ख मुख को नीलोत्पल की भांति नीला कर लिया। इस प्रकार उपमानों के माध्यम से विरहग्रस्त जुलेखा को पागलों का सा आचरण करते वस्त्रों को तार तार करते रक्त के आंसू बहाते शरीर को क्षत विक्षत करने और जहर के घूंट पीते दर्शाया गया है। एक जिस प्रकार वियोग श्रृंगार के वर्णन में उपमानों का आश्रय लिया गया है उसी प्रकार संयोग वर्णन में भी उनकी सहायता ली गई है। उदाहरणार्थ कुछ पंक्तियां देखिए जिनका संबंध यूसुफ जुलेखा के विवाहोपरांत प्रथम भेंट से है। दो चू चश्म अंदाख्त रुए दीद जेबा, बसाने नक्शे चीन बर रुए देबा। अर्थात जब हजरत यूसुफ ने जुलेखा पर आंख डाली तो उन्होंने सुंदर मुखमंडल को देखा। वह मुखमंडल ऐसे था जैसे मखमल पर चीनी चित्र तीन श्रृंगार हों। एक, हिंदी सूफी काव्य की अपेक्षा फारसी सूफी काव्य में विरह वर्ण अधिक अत्युक्तिपूर्ण होता है। दो, यूसुफ जुलेखा नवल किशोर प्रेस कानपुर पृष्ठ 280। तीन, चीन के विश्व विश्व चित्रकार मानी के चित्र अद्वितीय माने जाते हैं। चुरुए हुरेन मतबू ओ मकबूल रुखश जे आरायशे मशाता माजूल पृष्ठ संख्या 584। अर्थात उसका मुख स्वर्गांगना के चेहरे के समान मनोवांछित एवं मान्य था और प्रसादिका के श्रृंगार से मुबर्रा मुक्त था। हिंदी सूफी काव्य में भी उपमानों के माध्यम से मानवीय भावनाओं की अत्यंत मार्मिक अभिव्यंजना की गई है। कुछ उदाहरण देखिए जिनमें सादृश्य मूलक अलंकारों का आश्रय लिया गया है। कुतुबन कृत मृगावती में जब सप्तरंगी मिर्गी अंतर्धान हो जाता है तो राजकुमार मानसरोदक कूद में पड़ता है, परंतु उसका कोई पता नहीं चलता। राजकुमार निपट निराश एवं हताश हो जाता है और वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसका पिता वहां पहुंचता है। वह राजकुमार को बहुत समझाता बुझाता परंतु वह घर वापस जाने से इनकार कर देता है। राजा अपने राज्य के कारीगरों को बुलवाकर उसके लिए उसी स्थान पर एक प्रासाद बनवा देता है। वह रात दिन आंसू बहाता रहता है। जिस प्रकार भादो मास में अतिवृष्टि होती है उसी प्रकार से राजकुमार की आंखें आंसू बहाती हैं। असी भादों बरसे अतिवानी सब जग भरा नैन के पानी। एक, प्रेमी अपने को मृग तथा प्रेमिका को बहेलिया बताता है क्योंकि प्रेमिका के ही नयन बाणों से वह आहत हुआ है। हौरे मिर्गा वह पारुदी भई बाण बिसारी मारी हनी गई। दो, आगे चलकर प्रेमी को जितने अधिक कष्ट मिलते हैं उसकी प्रीति उतनी ही बढ़ती जाती है। उसमें आत्मसंतोष की वृद्धि हो जाती है। जैसे अग्नि में डालने से सुवर्ण चमकता है, उसे यह बोध होने लगता है कि उसने भौतिक जीव तो उसी दिन निकाल दिया था जब प्रीति प्रेम रस उस पर चढ़ा था। एक, कुतुबन कृत मृगावती संपादक डॉ. शिव गोपाल मिश्र प्रयाग शक 1885 पृष्ठ 76। दो, वही पृष्ठ 78। उसका प्रेम अब भ्रमर की भांति है, मर कर भी वह पुष्प को नहीं छोड़ता पृष्ठ संख्या 585। मैं आपन जीव तहियई काढ़ा प्रीति प्रेम रस जेहि दिन बाढ़ा। प्रेम लागी मैं जीव पर छेवा भौर मरे पहचान न केवा। एक, कुतुबन ने मृगावती में 12 मासे का वर्णन किया है जिसमें रूप मिनी राजकुमार के लिए व्याकुल है। दो, निम्नलिखित दोहा में उपमानों की छटा द्रष्टव्य है। कुंजर बिरह शरीर बन दलय बिंध से खाए पिय गलगजहु सिंध होई कुंजर बिरह पराए। तीन, रावण की लंका तो जलकर बुझ भी गई किंतु विरहाग्नि किसी प्रकार भी नहीं बुझती दिखाई देती। प्रेमी के दर्शन मात्र ही से यह शांत हो सकती है। रावण लंका जरी बुझी यह कैसे ही न बुझाई जही कारण यह लागी तही भेटे तो जाई। चार, असीम विरह यातनाओं एवं अपार प्रयत्नों के पश्चात साधक को सफलता प्राप्त होती है और प्राप्त होता है चिर अभिलषित संयोग। यह वह अवस्था है जिसको प्राप्त करने पर तादात्म्य हो जाता है। प्रेमिका और प्रेमी के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। चला पौन मालती संग लाई भंवर कहा तही ठाउ ले जाई। मालती सुर किए व परगासा भौर छूट भौ कमल बिगासा। लोचन चारि होति मिली जाही जस पानी मह बूंद समाही। दुई नर है एक भय गाता वह वही राता वोह वही राता। पांच, एक, कुतुबन कृत मृगावती संपादक डॉ. शिव गोपाल मिश्र प्रयाग शक 1885 पृष्ठ 128। दो, वही पृष्ठ 165-169। तीन, वही पृष्ठ 166। चार, वही पृष्ठ 167। पांच, कुतुबन कृत मृगावती संपादक डॉ. शिव गोपाल मिश्र प्रयाग शक 1885 पृष्ठ 162। पृष्ठ संख्या 586। इस प्रकार प्रत्येक सूफी कवि के ग्रंथ रत्न से उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निष्कर्ष। निसंदेह हिंदी सूफी कवियों ने फारसी सूफी कवियों की भांति सादृश्य मूलक अलंकारों के माध्यम से मानवीय भावों तथा रागात्मक प्रवृत्तियों को सूक्ष्म अंकन द्वारा जीवंत बना दिया है। कहीं कहीं विप्रलंब श्रृंगार के अंतर्गत उपमानों की योजना में हिंदी सूफी कवियों ने फारसी परंपरा से प्रभावित होकर रक्त मांस ऐसे उपकरणों की संयोजना की है। फारसी और हिंदी सूफी कवियों की अलंकार योजना प्रयास जन्य नहीं है, कष्ट साध्य तथा अपरिचित उपमानों का प्रयोग नहीं के बराबर है। फारसी और हिंदी सूफी कवियों के लिए अलंकार साध्य नहीं, स्वाभाविक साधन मात्र हैं। शैली। मसनवी शैली के अनुसार काव्यों के प्रारंभ में ईश्वर, पैगंबर, खलीफों, कवि के गुरु और सामयिक बादशाह की प्रशंसा रहती है। इसके अनंतर प्रायः पुस्तक के रचनाकाल तथा उसके लिखने के कारणों पर प्रकाश डाला जाता है। फारसी सूफी काव्य। फारसी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ मसनवी लेखक मौलाना निजामी की पहली मसनवी मखजनुल असरार एक में सर्वप्रथम अल्लाह की वंदना है, पृष्ठ 2-13 तक। इसके पश्चात हजरत मोहम्मद के नबी होने के पक्ष में तर्क दिए गए हैं, पृष्ठ 13-15 तक। इसके बाद मेराज 2 का उल्लेख है, पृष्ठ 15-21 तक। एक, मखजनुल असरार, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ। इस ग्रंथ में धार्मिक और नीति संबंधी उपदेश दिए गए हैं। 2. हजरत मोहम्मद का आकाश पर जाना। एक रात जब हजरत मोहम्मद सो रहे थे तो जिब्राइल आए और उन्होंने आपको जगाकर बुराक पर सवार कर दिया। बुराक एक बेहिश्ती सुरलोक का चौपाया था जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। वह बहुत तेज दौड़ता था और पलों में करोड़ों मील तय कर सकता था। इसी पर सवार होकर आपने आकाश की ओर चढ़ना आरंभ किया और देखते ही देखते हजरत जिब्राइल के निवास स्थान तक पहुंच गए। हजरत जिब्राइल वहीं रुक गए। हजरत मोहम्मद ने दूसरी सवारी ली, उसका नाम रफरफ था। अंततः खुदा के दर्शन किए और फिर भूमि पर आ गए। पृष्ठ संख्या 587। फिर नात 1 में हजरत मोहम्मद का गुणगान किया गया है, पृष्ठ 21-33 तक। इसके अनंतर सामयिक बादशाह मलिक फखरुद्दीन बहराम शाह की प्रशंसा की गई है, पृष्ठ 33-36 तक, जिसे कवि ने अपने ग्रंथ को समर्पित किया है। फिर गुरु की तारीफ की गई है, पृष्ठ 36-39 तक। इसके उपरांत इस ग्रंथ के प्रणयन का उद्देश्य लिखा गया है, पृष्ठ 39-43 तक। इसके बाद कवि एवं कविता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, पृष्ठ 43-51 तक। फिर ग्रंथ का आरंभ किया गया है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने मंतिकुत्तर 2 में सबसे पहले खुदा की तारीफ पृष्ठ 2-13 तक और हकायत पृष्ठ 13-15 तक, फिर रसूल की नात पृष्ठ 16-23 और हकायत पृष्ठ 23-24 तक, चार खलीफों का गुणानुवाद पृष्ठ 25-28 तक, तसुब कट्टरपन पक्षपात के संबंध में पृष्ठ 28-30 तक तथा हकायतें पृष्ठ 30-36 तक दी हैं। तत्पश्चात मूल कथा प्रारंभ की है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने समकालीन बादशाह की प्रशंसा नहीं की क्योंकि वे चाटुकारी से कोसों दूर रहते थे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी की विश्व विश्रुत मसनवी को छोड़कर सभी सूफी काव्यों में मसनवी की इस परंपरा का पालन किया गया है। मौलाना रूम ने उपर्युक्त बातों की अवहेलना की है। 1. मोहम्मद साहिब की छंदोबद्ध प्रशंसा। 2. मंतिकुत्तर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ संख्या 588। हिंदी सूफी काव्य। हिंदी के सूफी कवि भी मसनवी शैली के अनुरूप प्रारंभ में ईश्वर की वंदना, रसूल का गुणगान, चार खलीफों का यशोगान, एक पीर या गुरु की प्रशंसा और शाहे वक्त अर्थात समकालीन बादशाह का उल्लेख नियमित रूप से करते हैं। कवि प्रायः आत्म परिचय देने के साथ ही कथा रचना का उद्देश्य भी बता देते हैं। गुरु परंपरा का निर्देश भी प्रायः इन प्रेमाख्यानों में उपलब्ध होता है। मृगावती। डॉ. श्याम मनोहर पांडे के शब्दों में मृगावती की दिल्ली वाली प्रति में प्रारंभिक अंश में से केवल ईश्वर तथा सृष्टि के संबंध की चौपाइयां प्राप्त होती हैं। 2. डॉ. शिव गोपाल द्वारा संपादित कुतुबन कृत मृगावती का आरंभ इस प्रकार होता है, सिफती पैगम्बर की पहले नूर मोहम्मद कीनी पाछे तेही कजत सब चीन्ही, औतहि लगी आई ही परगटी, शिव शक्ति की तिस दुई घटी, जेहि रसना वह नाव न आवा, पावक जरे मोख नहीं पावा, भरम छाण के हो हुसयाने, नाव भरम कस फिरहु बुलाने, हिये नाव लय बकत सुनावहु, मुक्ति होय इंद्रासन पावहु, ही लगिए आव बहुत भावना भाव। स्पष्ट है कि यहाँ ईश्वर वंदना और पैगंबर की प्रशंसा तिनके की ओठ पहाड़ छिपाने के समान है। एक, शिया इमाम हसन और हुसैन का यशोगान करते हैं, कवि नूर मोहम्मद को उदाहरण स्वरूप रखा जा सकता है। दो, डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे मध्ययुगीन प्रेमाख्यान इलाहाबाद पृष्ठ 257 पृष्ठ संख्या 589। इसके उपरांत पैगंबर के चार मित्रों तथा कवि के पीर अथवा गुरु की स्तुति की गई है। पद्मावत, जायसी ने पद्मावत के स्तुति खंड एक में सर्वप्रथम ईश्वर की वंदना की है। उस परम शक्तिमान एक करतारु का वर्णन करने के उपरांत कवि ने मोहम्मद साहिब का स्मरण किया है। उसके बाद पैगंबर के चारों मित्रों का वर्णन किया है। पैगंबर के चारों मित्रों का वर्णन करने के उपरांत शाहे वक्त दिल्ली अधिपति शेर शाह का उल्लेख किया है। फिर जायसी ने अपने पीर की प्रशंसा की है जिसने कि उसे पंथ सुझाया। आगे चलकर शेख मोहिउद्दीन के प्रति भी गुरुवत श्रद्धा का प्रदर्शन किया है। इसके अनंतर कवि ने अपना परिचय दिया है। अपना परिचय देने के पश्चात उसने अपने चारों मित्रों का वर्णन किया है, अपना निवास स्थान बताया है और फिर ग्रंथ का रचना काल देकर कथा का सार संक्षेप में कह दिया है। मधुमालती दो में कवि मंजन ने सबसे पहले ईश्वर की स्तुति की है, छंद 1-7 तक। इसके उपरांत पैगंबर की प्रशंसा छंद 8, हजरत मोहम्मद के प्रपत्रों अर्थात उत्तराधिकारी चार खलीफों का गुणानुवाद छंद 9, सामयिक बादशाह सलीम शाह की तारीफ छंद 10-13 तक तथा गुरु का यशोगान छंद 14-21 तक वर्तमान है। तदनंतर ग्रंथ का रचना काल छंद 40 वर्णित है। इसी प्रकार अन्य हिंदी सूफी कवियों ने भी मसनवी पद्धति के आधार पर कथा आरंभ से पूर्व ईश्वर वंदना, मोहम्मद साहेब की स्तुति, तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा आदि देकर इस शैली की परंपरा का पालन किया है। एक, जायसी ग्रंथावली पद्मावत स्तुति खंड पृष्ठ 109। दो, मंजन कृत मधुमालती संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961।